राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 4। विधवा स्त्री और तेल पात्र। भविष्य वक्ता मंडल के भविष्य वक्ताओं में से एक की पत्नी ने एलिशा की दोहाई दी, आपके सेवक मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। आपको मालूम ही है कि आपके सेवक के मन में यहावे के लिए कितना भय था। अब हालात यह है कि जिसका वह कर्जदार था वह मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए आ खड़ा हुआ है। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बताओ क्या क्या बाकी रह गया है तुम्हारे घर में? उस स्त्री ने उत्तर दिया, आपकी सेविका के घर में अब तेल का एक पात्र के अलावा कुछ भी बचा नहीं रह गया है। एलिशा ने उससे कहा, जाओ और अपने सभी पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लाओ और ध्यान रहे कि ये बर्तन गिनती में कम ना हो। तब उन्हें ले तुम अपने पुत्रों के साथ कमरे में चली जाना और दरवाजा बंद कर लेना। तब इन सभी बर्तनों में तेल उंडेलना शुरू करना। जो जो बर्तन भर जाए उन्हें अलग रखते जाना। तब वह वहां से चली गई। अपने पुत्रों के साथ कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। वह बर्तनों में तेल उंडेलती गई और पुत्र उसके सामने खाली बर्तन लाते गए। जब सारे बर्तन भर चुके उसने अपने पुत्र से कहा, और बर्तन ले आओ। पुत्र ने इसके उत्तर में कहा, अब कोई बर्तन नहीं है। तब तेल की धार थम गई। उसने परमेश्वर के जन को इस बात की खबर दे दी और परमेश्वर के जन ने उस स्त्री को आदेश दिया, जाओ यह तेल बेचकर अपना कर्ज भर दो। जो बाकी रह जाए उससे तुम और तुम्हारे पुत्र गुजारा करें। एलिशा द्वारा शूनामी स्त्री के पुत्र का पुनर्जीवन। एक दिन एलिशा शूनेम नाम के स्थान पर गए। वहां एक धनी स्त्री रहती थी। उसने एलिशा को विनती करके भोजन पर बुलाया। इसके बाद जब कभी एलिशा वहां से जाते थे वहीं रुककर भोजन कर लेते थे। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनिए अब तो मैं यह समझ गई हूं कि यह व्यक्ति जो हमेशा इसी मार्ग से जाया करते हैं परमेश्वर के पवित्र जन है। हम छत पर दीवारें उठाकर एक छोटा कमरा बना ले, उनके लिए वहां एक बिछोना, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीपक रख दे कि जब कभी वह यहां आए वहां ठहर सके। एक दिन एलिशा वहां आए और उन्होंने उस कमरे में जाकर आराम किया। उन्होंने अपने सेवक गेहिजी से कहा, शूनामी स्त्री को बुला लाओ। वह आकर उनके सामने खड़ी हो गई। एलिशा ने गेहिजी को आदेश दिया, उससे कहो, देखिए आपने हम दोनों का ध्यान रखने के लिए यह सब कष्ट किया है। आपके लिए क्या किया जा सकता है? क्या आप चाहती है कि किसी विषय में राजा के सामने आपकी कोई बात रखी जाए या सेनापति से कोई विनती की जाए? उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो अपनों ही के बीच में रह रही हूं। तब उन्होंने पूछा, तब इस स्त्री के लिए क्या किया जा सकता है? गेहेजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसके पति ढलती उम्र के व्यक्ति हैं। एलिशा ने कहा, उसे यहां बुलाओ। जब वह स्त्री आकर द्वार पर खड़ी हो गई, एलिशा ने उससे कहा, अगले साल इसी मौसम में लगभग इसी समय तुम्हारी गोद में एक पुत्र होगा। वह स्त्री कहने लगी, नहीं मेरे स्वामी, परमेश्वर के जन अपनी सेविका को झूठी आशा ना दीजिए। उस स्त्री ने गर्भ धारण किया और अगले साल उसी समय वसंत के मौसम में उसने एक पुत्र को जन्म दिया, ठीक जैसा एलिशा ने उससे कहा था। बड़ा होता हुआ वह बालक एक दिन कटनी कर रहे मजदूरों के बीच अपने पिता के पास चला गया। अचानक उसने अपने पिता से कहा, अरे मेरा सिर, मेरा सिर। पिता ने अपने सेवक को आदेश दिया, इसे इसकी माता के पास ले जाओ। सेवक ने उस बालक को उठाया और उसकी माता के पास ले गया। वह बालक दोपहर तक अपनी माता की गोद में ही बैठा रहा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस स्त्री ने बालक को ऊपर ले जाकर उस परमेश्वर के जन के बिछोने पर लिटा दिया और दरवाजा बंद करके चली गई। तब उसने अपने पति को यह संदेश भेजा, मेरे पास अपना एक सेवक और गधा भेज दीजिए कि मैं जल्दी ही परमेश्वर के जन से भेंट कर लौट जाऊं। पति ने प्रश्न किया, तुम आज ही क्यों जाना चाह रही हो? आज ना तो नया चांद है और ना ही शब्बात। उसका उत्तर था, सब कुछ कुशल ही होगा। तब उसने गधे को तैयार किया और अपने सेवक को आदेश दिया, गधे को तेज हाँको, मेरे लिए रफ्तार धीमी ना होने पाए जब तक मैं इसके लिए आदेश ना दूं। वह चल पड़ी और कार्मेल पर्वत पर परमेश्वर के जन के घर तक पहुंच गई। जब परमेश्वर के जन ने उसे अपनी ओर आते देखा, उन्होंने अपने सेवक गेहजी से कहा, वह देखो शूनामी स्त्री, तुरंत उससे मिलने के लिए दौड़ो और उससे पूछो, क्या आप सकुशल है? क्या आपके पति सकुशल है? क्या आपका पुत्र सकुशल है? उसने उसे उत्तर दिया, सभी कुछ सकुशल है। तब जैसे ही वह पर्वत पर परमेश्वर के जन के पास पहुंची, उसने एलिशा के पैर पकड़ लिए। जब गेहजी उसे हटाने वहां पहुंचा, परमेश्वर के जन ने उससे कहा, ऐसा कुछ ना करो, क्योंकि इसका मन भारी दर्द से भरा हुआ है। इसके बारे में मुझे यहावे ने कोई सूचना नहीं दी है, इसे गुप्त ही रखा है। तब उस स्त्री ने कहना शुरू किया, क्या अपने स्वामी से पुत्र की विनती मैंने की थी? क्या मैंने ना कहा था, मुझे झूठी आशा ना दीजिए? एलिशा ने गेहजी को आदेश दिया, कमर कस लो और अपने साथ मेरी लाठी ले लो और चल पड़ो। मार्ग में अगर कोई मिले तो उससे हालचाल जानने के लिए ना रुकना। यदि तुम्हें कोई नमस्कार करे तो उसका उत्तर ना देना। जाकर मेरी लाठी उस बालक के मुंह पर रख देना। तब बालक की माता ने एलिशा से कहा, जीवित यहावे की शपथ और आपकी शपथ, मैं आपके बिना ना लौटूंगी। तब एलिशा उठे और उस स्त्री के साथ चल दिए। गेहजी ने आगे आगे जाकर बालक के मुंह पर लाठी टिका दी, मगर वहां ना तो कोई आवाज सुनाई दिया गया और ना ही उसमें जीवन का कोई लक्षण दिखाई दिया। तब गेहजी ने लौटकर एलिशा को खबर दी, बालक तो जागा ही नहीं। जब एलिशा ने घर में प्रवेश किया, वह मरा हुआ बालक उनके ही बिछोने पर ही लिटाया हुआ था। तब एलिशा कमरे के भीतर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। वे दोनों बाहर ही थे। एलिशा ने यहावे से प्रार्थना की। तब वह जाकर बालक के ऊपर लेट गए। उन्होंने अपना मुख बालक के मुख पर रखा। उनकी आंखें बालक की आंखों पर थीं और उनके हाथ बालक के हाथों पर। जब वह उस बालक पर लेट गए, तब बालक के शरीर में गर्मी आने लगी। फिर वह नीचे उतरे और घर के भीतर ही टहलते रहे। तब वह दोबारा बिछोने पर चढ़ गए और बालक पर लेट गए। इससे उस बालक को 7 बार छींक आई और उसने आंखें खोल दी। एलिशा ने गेहजी को पुकारा और आदेश दिया, शूनामी स्त्री को बुलाओ। तब गेहजी ने उसे पुकारा। जब वह भीतर आई, उन्होंने उस स्त्री से कहा, उठा लो अपने पुत्र को। वह आई और भूमि की ओर झुककर एलिशा के पैरों पर गिर पड़ी। इसके बाद उसने अपने पुत्र को गोद में उठाया और वहां से चली गई। एलिशा द्वारा घातक भोजन की शुद्धि। एलिशा दोबारा गिलगाल नगर को लौट गए। इस समय देश में अकाल फैला था। भविष्यद्वक्ता मंडल इस समय उनके सामने बैठा हुआ था। एलिशा ने अपने सेवक को आदेश दिया, एक बड़े बर्तन में भविष्यद्वक्ता मंडल के लिए भोजन तैयार करो। एक भविष्यद्वक्ता ने बाहर जाकर खेतों में से कुछ साग पात इकट्ठा किया। वहीं उसे एक जंगली लता भी दिखाई दी, जिससे उसने बड़ी संख्या में जंगली फल इकट्ठा कर लिए। उसने इन्हें काटकर पकाने के बर्तन में डाल दिया। उसे यह मालूम ना था कि ये फल क्या थे। जब परोसने के लिए भोजन निकाला गया और जैसे ही उन्होंने भोजन खाना शुरू किया, वे चिल्ला उठे, परमेश्वर के जन, इस हांडी में मौत है। वे भोजन ना कर सके। एलिशा ने आदेश दिया, थोड़ा आटा ले आओ। उन्होंने उस आटे को उस बर्तन में डाला और कहा, अब इसे इन्हें परोस दो कि वे इसे खा सके। बर्तन का भोजन खाने योग्य हो चुका था। 100 अतिथियों के लिए 20 रोटियां। बाल शालिशा नामक स्थान से एक व्यक्ति ने आकर परमेश्वर के जन को उपज के प्रथम फल से बनाई गई 20 जों की रोटियां और बोरे में कुछ बाले लाकर भेंट में दी। एलिशा ने आदेश दिया, यह सब भविष्यद्वक्ता मंडल के भविष्यवक्ताओं में बांट दिया जाए कि वे भोजन कर ले। सेवक ने प्रश्न किया, यह भोजन 100 व्यक्तियों के सामने कैसे रखा जाए? एलिशा ने अपना आदेश दोहराया, यह भोजन भविष्यद्वक्ता मंडल के भविष्यवक्ताओं को परोस दो कि वे इसे खा सके, क्योंकि यह यहावे का संदेश है, उनके खा चुकने के बाद भी कुछ भोजन बाकी रह जाएगा। तब सेवक ने भोजन परोस दिया, वे खाकर तृप्त हुए और कुछ भोजन बाकी भी रह गया जैसा यहावे ने कहा था।